कुछ देर बाद वो लोग आरवी के घर पहुंचे। दोपहर के 2 से ज्यादा हो चुके थे। अंशु सो रही थी, अनुपमा जी हॉल में बैठी थीं और आरवी बच्चों को पढ़ा रही थी। अनुपमा जी ने ही दरवाज़ा खोला तो उन्हें सामने देखकर दोनों ही अचकचा गए। अनुपमा जी भी कुछ हैरान हुई उन्हें साथ देखकर, पर उन्होंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। दोनों अंदर चले आए। रश्मि ने अनुपमा जी को बता दिया कि उन्हें आरवी से कुछ बात करनी है, तो उन्होंने आरवी को जाने को कहा और खुद बच्चों को पढ़ाने लगीं। आरवी ने दोनों को अपने कमरे में भेज दिया और खुद उनके लिए पानी वगैरह लेने चली गई। कुछ देर बाद तीनों उसके कमरे में बैठे थे। अंशु नीचे अनुपमा जी के कमरे में सो रही थी तो वहां बस वही तीनों थे। गहरी शांति पसरी हुई थी वहां। आरवी की तीखी निगाहें उन दोनों पर टिकी थीं, क्योंकि उनके चेहरे देखकर ही उसको कुछ गड़बड़ होने का शक हो गया था। रेहान और रश्मि दोनों बेचारे आए तो उससे बात करने थे, पर दोनों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि शुरू कहां से करे। वो कभी एक दूसरे को, कभी आरवी को, तो कभी अपने हाथ में पकड़े पानी के ग्लास को देख रहे थे। आरवी कुछ देर तक तो दोनों पर नजरें टिकाए उनके कुछ कहने का इंतजार करती रही, पर जब दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने तनकर बैठते हुए गहरी निगाहों से उन्हें देखते हुए सवाल किया, चल क्या रहा है यहाँ? पिछले 15 मिनट से आप दोनों या तो एक दूसरे को देख रहे हैं या फिर पानी का ग्लास जो खाली हो चुका है उसमें मुंह घुसाए बैठे हैं। अगर कोई बात है तो बताइए, और अगर आपस में ही बात करनी है तो कहिए, मैं चली जाती हूँ, फिर आपस में जितनी मर्जी बात करते रहिएगा। बेवजह मुझे यहाँ बिठाकर रखने का क्या मतलब है? नहीं भाभी, बात तो आपसे ही करनी है हमें, पर जरा कन्फ्यूज हैं कि शुरू कहाँ से करें। रेहान ने आखिरकार अपनी उलझन उसके सामने रखी दी। आरवी ने रश्मि की तरफ निगाहें घुमाई तो उसने भी बेचारी सी शक्ल बनाकर हामी भर दी। उनके उतरे हुए परेशान चेहरे देखकर आरवी ने अब थोड़ा आराम से कहा, कहिए जो भी कहना है, मैं शांति से सारी बात सुनूंगी, तो हिचकिचाना बंद कीजिए, बेवजह वक्त बर्बाद हो रहा है। रश्मि अब उठकर आरवी के बगल में बैठ गई और उसको मस्का लगाते हुए बोली, आरू, हमें ना तेरी मदद की जरूरत है, समझ ले बात मेरी जिंदगी और मौत की है। अगर तू चाहे तो मुझे नई जिंदगी दे सकती है, वरना तो मुझे मौत को ही गले लगाना पड़ेगा। रश्मि ने ऐसे मुंह लटकाया जैसे अभी ही पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर से छलांग लगाने वाली हो। उसकी नौटंकी देखकर रेहान तो आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे देखने लगा। वहीं आरवी ने उसको गुस्से से घूरते हुए कहा, और कोई बकवास नहीं मिली करने को? रश्मि फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि रेहान ने उसको रोकते हुए कहा, तुम रहने दो, पता नहीं तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा घुस गई है, इतनी गंदी एक्टिंग। छी, कोई तुम्हें सपोर्टिंग रोल के लिए भी कास्ट ना करे, मुझे आज पता चला कि तुम ओवर एक्टिंग की पूरी दुकान हो। अगर तुम बताने बैठी तो अगला दिन निकल आएगा, इसलिए मुझ पर एक एहसान करो और कुछ देर अपना मुंह बंद करके बैठो, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, तो जो बात करनी है वो मैं करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। रेहान की बात सुनकर रश्मि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अगर कोई और मौका होता तो वो उसको कभी यूं जाने नहीं देती, मार मारकर उसका कचुम्बर निकाल देती, पर आज उनके पास सच में वक्त नहीं था, इसलिए अपना मन मारकर जबरदस्ती उसको रेहान की बात मानते हुए चुप होकर बैठना ही पड़ा। पर उसने अपना गुस्सा दिखाते हुए रेहान को देखकर मुंह तो बना ही लिया था। आज रेहान के कहने पर रश्मि ने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बात मानते हुए चुप करके बैठ गई। ये देखकर आरवी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने खामोश बैठी रश्मि को हैरानी से देखते हुए कहा, तू ठीक तो है? तू तो रेहान की कोई सही बात भी बर्दाश्त नहीं करती, उनसे भिड़ने के मौकों को तलाशती रहती है, और आज तूने पलटकर कुछ भी नहीं कहा, तो इतनी आज्ञाकारी कब से बन गई कि उनकी बात मानकर चुप होकर बैठ गई? रश्मि को गुस्सा तो आ ही रहा था, उस पर आरवी की बातों ने उसके जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। वो किसी जहरीली नागिन की तरह रेहान को देखकर फुफकारने लगी, जैसे बस अभी ही उसको साबुत ही निगल जाएगी। रेहान तो उसको देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। रश्मि उसको घूर तो रही थी, पर उसने अब भी एक शब्द तक नहीं कहा था, इसलिए आरवी अब भी आंखें बड़ी बड़ी किए उन दोनों को हैरानी से देख रही थी। रेहान ने अब रश्मि पर से निगाहें हटाई और आरवी को देखकर कहना शुरू किया, भाभी, हमें आपकी मदद चाहिए, आज रश्मि को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, पर रश्मि को उससे नहीं मिलना, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। वो चाहती है कि आप उसके तरफ से अंकल से बात करें और उन्हें लड़के देखने से रोकने के साथ उन दोनों के रिश्ते के लिए भी मना ले। रेहान ने शातिरगिरी दिखाई और रश्मि के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने लगा। उसकी बात सुनकर आरवी और ज्यादा हैरान हो गई। वहीं रश्मि ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो अगले ही पल वो गुस्से में बरस पड़ी। अच्छा बच्चू, बहुत बढ़िया, सारा बम मेरे नाम पर फोड़ रहे हो। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। बहुत शातिर बन रहे हो ना, मुझे फंसाकर खुद को एकदम साइड कर लिया, पर मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, मैं आरू को सब सच बता दूंगी, बड़े आए मुझे फंसाने वाले, रश्मि ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। फिर आरवी को देखकर आगे कहना शुरू किया, आरू, बात यह है कि आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैं और फिर रेहान को घूरते हुए बोली, तेरा ये निकम्मा देवर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, दिक्कत यह है कि इसके पेरेंट्स कल तक ही आ पाएंगे
और मुझे देखने लड़के वाले आज शाम को ही आ रहे हैं। हम चाहते हैं उनके आने से पहले हम पापा को हमारे बारे में बता दें, वरना अगर कहीं पापा को वो लड़का पसंद आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तेरा देवर किसी काम का नहीं है, पापा से हमारी बात करने में उसकी फट रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी तरफ से तू बात करे पापा से और उन्हें हमारे रिश्ते के लिए मनाए। अगर तू साथ चलेगी तो माँ बाप को मनाना आसान हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ आए हैं तेरे पास। रश्मि ने एक सांस में ही उसको सब बता दिया। उसकी बात सुनकर आरवी का सर घूमने लगा। उसने पानी का ग्लास उठाकर उसको एक बार में खत्म कर दिया। दोनों की निगाहें आरवी पर टिकी थी और आरवी बेचारी उसकी बातों में बुरी तरह उलझी हुई थी। उसने एक सांस में सारा ग्लास खाली कर दिया, फिर निगाहें उठाकर उन दोनों को देखा और हैरानियत से बोली, कब से चल रहा है ये? मतलब आप दोनों साथ हैं और मुझे आज बता रहे हैं, जब आपको मेरे मदद की जरूरत है अपने प्यार की नैया को किनारे लगाने के लिए? मतलब जब जरूरत पड़ी तब याद आया आप दोनों की मुझे अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए? अगर अभी भी मेरी जरूरत नहीं पड़ती तो अभी भी मुझे कुछ नहीं बताते? उसकी बात सुनकर रश्मि ने सफाई पेश करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, आरवी ने गुस्से से कहा, तू तो मुझे अपना मुंह दिखा ही मत, मुझे ना तुझसे बात ही नहीं करनी है और ना तेरी जैसी गद्दार धोखेबाज लड़की का चेहरा देखना है। बेटा दोस्त कहती है मुझे और मुझे से इतनी बड़ी बात छुपाई? मैंने तो कभी तुझसे कोई बात नहीं छुपाई अपने बारे में, मुझे जब प्यार हुआ तब भी सबसे पहले तुझे ही बताया, जबकि मुझे तो एहसास भी नहीं था कि ये प्यार है और तूने मुझसे ही ये बात छुपाई। आरवी अब गुस्से में लग रही थी, हमेशा शांति रहती थी वो, पर जब कभी गुस्सा करती तो रश्मि हमेशा उसके गुस्से के आगे हार जाती थी। आज भी बेचारी छोटा सा मुंह करके बैठ गई। आखिर उसकी नाराजगी भी ठीक थी और गुस्सा भी जायज था, इसलिए उसने अब कुछ नहीं कहा, अपना सर झुका लिया उसने। रेहान ने आरवी का गुस्सा देखते हुए रश्मि का बचाव करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, आरवी का गुस्सा उस पर बरस पड़ा।
और आप भी मत कीजिएगा उसके पैरवी करने की, ये हम दोनों दोस्तों के बीच की बात है। भले ही रश्मि आपसे प्यार करती हो, पर उसके प्यार को हमारी दोस्ती के बीच आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वैसे आप भी कुछ कम नहीं हैं। प्यार क्या हुआ, अपना वादा भूल गए? रश्मि के बारे में आपने मुझे नहीं बताया, जबकि आपने कहा था कि अगर आपको उससे प्यार हुआ तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, और आज आ गए मेरे पास अपने रिश्ते की सिफारिश करवाने। ऐसा नहीं है भाभी, आपकी दोस्त ने हाँ कहने में इतने नाटक किए कि ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई, और जैसे ही उसने हाँ कहा मैंने सबसे पहले आपको ही बताया है। हाँ, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इसलिए हम यहाँ आए हैं, पर अगर ये बात नहीं भी होती तब भी मैं इसके बारे में ज़रूर बताता। आप रश्मि से नाराज़ हैं कि उसने आपसे ये बात छुपाई, पर उसने तो खुद आज अपने दिल के एहसासों को नाम दिया है। इतने वक्त से वो अपनी ही फीलिंग से भाग रही थी, आज जाकर मानी है कि प्यार है उसे मुझसे। फिर जब वो खुद सच्चाई को झुटलाने में लगी थी कि उसे भी मुझसे प्यार था, तो वो आपको कैसे बताती? मुझे आपके किसी बहाने को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं आप दोनों की कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। आरवी ने नाराजगी से मुंह फुला लिया। रेहान ने इशारों में रश्मि को कुछ कहा तो रश्मि ने इसके गर्दन में अपनी बाहों को फंसाते हुए कहा, जाने मन वो सच कह रहा, मैं ही अपनी फीलिंग्स को मानने को तैयार नहीं थी, मुंह फेर रही थी इस सच्चाई से, इसीलिए मैंने तुझे भी कुछ नहीं बताया। सॉरी यार, गलती हो गई, अब माफ भी कर दे, तुझे भी तो तेरी फीलिंग समझ नहीं आई थी। मैंने तुझे बताया था कि तुझे प्यार हो गया है, तू अपने अंदर आए बदलावों को तो पहचान गई थी, पर मैं तो सिरे से सब नकारती जा रही थी, इसीलिए मैंने तुझे भी कुछ नहीं बताया। बस इस बार माफ कर दे, आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। तू पापा से बात नहीं करना चाहती, हमारी हेल्प नहीं करना चाहती, तो ठीक है मत कर कुछ भी, पर नाराज भी मत हो, माफ कर दे मुझे।